તારીખ 9-10-1994 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 81
આગે કે પદોં કો સાથ ઉસકા જોડના વિષય કે સાથ ઉસકો જોડના ઉસકો કુછ અનવય અનવય મેને સાથ લખા અને મેને ટુકડા કર એસા અર્થ હૈ કે સાથ કો ઉપરતે હૈને ચલતે હુએ વિષય કા વો ભાવાર દીખ રહે હૈ શુરુ મેં વો ભાવાર બાદ મેં વો શબ્દ કો પકડ કરકે इस प्रकार से जीव द्रव्य तथा कर्म पर्याय का पिंड इन दोनों का एक बंद पर्याय अनादि से तथा आया है चाहे जीव का और कर्म वगैरह में जो विश्व में भरी हुई है उसमें से कितने परमाणु प्रकृति को प्राप्त करके कर्म पर्याय रूप हुए हैं प्रकृति रूप हुए हैं सभी अनंत परमाणु का पिंड है ऐसे सूर्य के पिता उसकी बात दोनों का एक पर्याय रूप संबंध उसको बंद कहते हैं दोनों का एक बंद पर्याय रूप मैंने संयोग रूप उस काल तक काल में रहने रूप जो अवस्था है तो उस प्रकार के विभिन्न परमाणुओं के साथ जीव का संबंध प्रणाम रूप अनादि से चला आया है उसमें ऐसा नहीं है कि वो परमाणु का पिंड है उसके साथ नादी का पिंड है ऐसा नहीं है उनके पुत्र परमाणु उदय में आकर के इसका संबंध छूट जाता है यानी उसकी सोल के साथ निर्जरा हो जाती है और उसी समय में संसारी जीव वेद ज्ञान के अभाव के कारण है राग द्वेष कर बैठता है महानवित होता है पर प्रकृति के अनुसरण करके विकारी विभावी भाव से परिणमन कर लेता है और उसको नया कर्मबंध होता है पुराना कर्मबंध खत्म होता है उसी बाद में नया कर्मबंध चालू हो जाता है प्रवास से जीव का और परमाणु का संबंध इस प्रकार के साइकिल चलती है तो आधा दिन से चालू हो जाता है नया नया कर्म करता है पुराना कर्म करता है नया कर्म कर लेता है और कर्म रहता है हमेशा हमेशा जैसे सभी पाद निर्मला को विरोध से लेकर सभी चिंता निर्मल होती है सभी पाद निर्मला सभी पाद निर्मला माने क्या तो जिस कर्म परमाणु की स्थिति का अनुबंध हुआ था उसकी स्थिति पूरी होती है और पूरी होती तो उद्योगान मंदिर में आ जाते हैं और उनका रस लेकर के कुछ फिर जाते हैं तो ऐसा सभी को हर समय चालू है उसको सभी पाद निर्मला कहते हैं तो विकास में आए हुए कर्म की है करना चाहते हैं इसको, और जीव के संयत पुरुषार्थ के कारण से विपाक में नहीं आए हो ऐसे परमाणु की स्थिति उपकर्षण होकर के अंतर स्थिति छुट्टी हो जाने से तो उदय में आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं। उसको मौजूद निर्जरा भी कहते हैं, उसको सकाम निर्जरा भी कहते हैं। सकाम में जब काम न माने पुष्पा या काम माने उत्साह, उत्साह के कारण उसको हुई निर्जरा वो ज्ञानी को कहते हैं, उसके रूप में ज्ञानी को नहीं देते हैं। निर्जरा का अर्थ है खीर जाना। निर्जरा का अर्थ क्या है? खीर जाना, सामान्य भोजन। निर्जरा का चार प्रकार है, कई विपाक कई विपाक। कई विपाक मैंने विपाक बोला स्थिति पूरी होने के पहले खीर जाए अपने पुरुषार्थ के कारण होते हैं उसको कई विपाक कहते हैं, और जो स्थिति जिसकी पूरी होने जा रही है वो उन्हें कहाँ पर कहते हैं उसको कई विपाक कहते हैं। तो सकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, जो पुरुषार्थ के कारण से निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा है, और ऐसे ही जगत कर्म की निर्जरा होती है जिसमें कोई बुद्धि अकल चलानी नहीं है वो असम निर्जरा है, जो सुखम कर्म है वो असम निर्जरा है। तो निर्जरा के चार इस प्रकार से जिसको अनादि कर्मबुद्ध कहा, लेकिन अनादि होता वो कर्मबुद्ध नहीं है। पुराने कर्म गिर जाते हैं, नए नए कर्म बनते हैं, और उसी प्रकार से कर्म की बंधवस्था अबंध अवस्था जिसको हमेशा अनादि काल से चालू नहीं है। जीव उपयुक्त ही है, होता वो जैसे हम हमारे जीव का विचार करें तो अनादि से हमारे जीव को कर्म समझ रहा है, लेकिन जिस कर्म का समझ रहा है वो कुछ काल पहले कर्म समझ हुआ है, इसके पहले दूसरे कर्म का समझ था, इसके पहले दूसरे कर्म का था, इसके पहले दूसरे कर्म का था, वैसी परिणामी थी। पदार्थ है या तो हमारे आत्मा या उदय जो में से एक जगह को परिणाम लगेगा लगेगा और लगेगा तीसरा तो कुछ स्थान नहीं, या तो उदय में लगता है परिणाम या तो आत्मा में लगता है। जिसने आत्मा को पहचाना और आत्मा के गुणों के प्रति आत्मा के सुख के प्रति जो आसक्त हुआ उसके परिणाम आत्मा में लगेंगे। जिसने आत्मा को नहीं पहचाना इस उज्जवल पर्याय में सुख है ऐसा भ्रम से उज्जवल के प्रति आसक्त हुआ है उसको परिणाम देने लगेंगे। दो प्रकार की आसक्ति होती है, जहाँ सुख है वहाँ आसक्ति होती है, सुख नहीं है और सुख की कल्पना है तो भी आसक्ति चालू रहेगी, और सही सुख को पहचानेंगे तो उसके सुख के परिणाम लगे बिना नहीं रहेगा तो सही लगेगा। तो पहचाने पहचानने से आएंगे पता आएंगे, हाँ पहचान के लिए परिचय करना पड़ेगा, परिचय के लिए अनुमोदन करना होगा, परिवर्तन के लिए भावना चाहिए, भावना के लिए अलग होना चाहिए, और इसके लिए सुदृष्टकरण होना चाहिए। ये सब आगे की बात, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, इस प्रकार से नहीं होगा तो ये बात को लागू करने वाली नहीं है। क्या है, हम संस्कार करते हैं तो वेदज्ञान का विषय चल रहा है, तो क्या वेदज्ञान का हमारा स्टेज है या नहीं है, इसके सब आगे के क्रम वाली इसी में से हम पसार होकर के वेदज्ञान तक आ पहुंचे हैं या नहीं आ पहुंचे हैं ये हमको विचार करना है। अगर हम नहीं आ पहुंचे हैं तो हम इसमें से हमारा वेदज्ञान के कार्य तो नहीं कर पाएंगे, हो सकेगा नहीं, करना चाहे तो भी हो सकेगा नहीं, इसलिए कभी तुम्हें पूछते हैं अपने गुरु को, तुम समय साल से बहुत साल से पढ़ते हैं, इसलिए विज्ञान का प्रकरण हर हर अधिकार में चले है, प्रत्येक अधिकार में चला है। तो समय साल तो आपने बहुत सालों तक पढ़ा, वेद ज्ञान कितने घंटे का, कितने महीने का किया, क्या उसका साल नहीं पूछते? इतने जीवन में अनेक बार समय साल पढ़ा, बहुत सालों तक पढ़ा, उसने कहा हुआ वेद ज्ञान हमने कितनी मिनट और कितने घंटे किए, तो उसका जवाब निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब यह है कि हमारा प्रयोजन सद रहा नहीं है, हम जो के क्यों वहाँ के वहाँ ऐसे रह जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्र का अध्ययन बहुत लंबे काल तक लंबे काल पर्यंत करने पर भी हमको आत्मलाभ नहीं होने का यही कारण है कि वर्तमान में हमको किस बात का प्रयोजन है, इस पर हमारा ध्यान नहीं गया है। यही कारण से वो बात रह गई है। पूरी बात सोच समझ कर हमें जो भी स्वाध्याय करना है वो करना है या नहीं करना है तो नहीं करना है। हमारा प्रयोजन सके इसलिए हमारी भूमिका के बराबर हमें हमको मालूम कर लेना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं और जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक कदम हम कैसे आगे बढ़े। इतना तीक्ष्ण सूक्ष्म प्रयोजन हमको भाषित नहीं होगा तो हम हमारे प्रयोजन के बाद हमारे सामने आने पर भी हम उसको समझ सकेंगे, ये बात हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे परिस्थिति का अवलोकन करो, हमारे परिस्थिति को समझे। अगर हम खुद नहीं समझ सके अपने आप से तो सत्संग में समझने का कोशिश करें, एक और साधन भी उपलब्ध है। कभी देखिए आपस में विचार कर रहे हैं हमारी कौन सी भूमिका है, बताइए आपको में इतनी इतनी बात है भूमिका की, इस भूमिका में हम कहाँ खड़े हैं। तो बात हमें जांच तलाश अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। ये तो बहुत बड़े कठिन की बात है। सत्संग में सत्संग समझने के कारण से किया जाता है, समझने के कारण से मुमुक्षुओं को करना नहीं चाहिए। ठीक है, मुमुक्षुओं को कभी दूसरे मुमुक्षुओं को समझाने के अभिप्राय से सत्संग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम समझने को आए हैं तो हमको समझने के लिए हमें सत्संग करना ये अभिप्राय लेके बैठना चाहिए, वरना तो एक नुकसान का और नुकसान का प्रसंग हो जाएगा।
कहते
हैं तो वो गुरु किसको कहते हैं कि जो सुनने के योग्य होते हैं उसको कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं। क्योंकि एक बहुत नाजुक परिस्थिति है, बहुत डेलिकेट परिस्थिति है कि किसी को अपने क्षति बताओ तो क्षति को समझ करके उसका अर्थ सुनता रहेगा लेगा या उल्टा लेगा, क्या मालूम करे उल्टा लेगा। तो संसार की परिस्थिति वो है कि काने को काना नहीं कहा जा सकता, तो कहेंगे तो वो बर्दाश्त भी करेगा नहीं, ये बहुत डेलिकेट है। इसलिए कहने सुनने में भी योग्यता चाहिए, वो तो नहीं कहा जा सकता, और जो सुनने योग्य है उसको कहा भी जाता है तो उसकी क्षति निकल जाती है, करना नहीं निकलती। इसलिए जो सच्चे आत्मार्थ हैं, सच्चे मुमुक्षु हैं, उनको अपनी ओर से प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए कि हमारी अयोग्यता हो, हमारी भूल हो, हमारी क्षति हो, कृपया हमें बता दीजिए। हम हमको हमारी गलती भूल बताने वाले का उपकार मानेंगे, इससे बड़ा उपकार कोई हमारा नहीं है। इस भूमिका में अगर कोई खड़ा है तो उसको बताने में कोई आपत्ति नहीं है, वरना परिस्थिति दूसरी हो जाती है। जो सत्संग के लिए आया है वो बन जाएगा, चला जाएगा, सत्संग का योग उसको छूट जाएगा। चढ़ने की योग्यता वाला भी कर सकता है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ नहीं कर सकता हूँ। इसके सिवा तो अनुसार ज्ञानी मिले हैं लेकिन पहचान पाए नहीं, ऐसी चली बात है। ज्ञानी को ज्ञानी मानकर भी चलते हैं और भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में तो भक्ति कर पाएंगे नहीं। तो वो संज्ञा में वो भाव आएंगे, वो आने चाहिए, वो आएंगे नहीं, तो दर्शन में थोड़ा आनंद होगा, लेकिन ये परिस्थिति लंबे काल तक चालू रहने में दर्शन मुश्किल भी हो जाएगा। क्या होता है इसका ख्याल नहीं हो तो भूल जाएगा। कर्म बंद का विषय ले रहे हैं पंडित जी साथ, तो अनादि से जीव के साथ कर्म का संबंध आया, चला आया है, नए नए कर्म का। तो ऐसा संबंध जब छुट जाए, नया बंध नहीं हो गए और ऐसा पुराना सुबंध छुट जाए और जीव ग्रह अपने शुद्ध स्वरूप परिणमे, नया बंध नहीं हो गए और जीव ग्रह अपने शुद्ध स्वरूप परिणमे, अनंत चतुष्टय को परिणमे, अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत देवी, ऐसे मुख्य गुण है। बाकी तो सभी गुण शुद्ध हो जाते हैं, जो अनुजीवी गुण है वो अनंत चतुष्टय के साथ सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो प्रतिजीवी गुण है वो बाकी रहे हैं, वो शुद्ध अवस्था में पूर्ण गुण है। सभी आबाद कहते हैं कि अनंत चतुष्ट जो परिणाम इतना भाव मोक्ष दिया है अरियंत अवस्था का, तथा उद्वेन्द्र ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय को छोड़े और उद्वेन्द्र जो ज्ञानावरण कुछ पर्याय को परिणाम से संबंध था तो सर्व सामान्य रूप परिणाम से लगे छूट करके जीव का संबंध छोड़ करके एक शास्त्र एक क्षेत्र अभ्यास संबंध था, और क्षेत्र को भी छोड़ करके प्रकृति को भी छोड़ करके कारण वर्णना में सर्व सामान्य रूप हो गए और जीव के प्रदेशों से सर्वथा संबंध रूप होकर जीव के प्रदेश के साथ जो संबंध था एक क्षेत्र अभ्यास को भी छोड़ करके संबंध छूट जाए और जीव पूर्व दोनों भिन्न भिन्न हो जाए, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। ये अनंत पुष्ट रूप हुए, ये भावमोक्ष है और सर्व परमाणु का संबंध छुट गया, उसको दृढ़ मोक्ष कहने में आता है। और जीव के स्वाभाविक गुण है जो जीव के जीव को अनुसरण करके जो सुख होते हैं उसको अनुजीवी कहते हैं, और जो जीव के गुण तो जीव के हैं लेकिन जिसके पुत्र के साथ जिसकी अपेक्षा है उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। सबसे मेरे दूसरे पुत्र के साथ जिसका संबंध है उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो जीव में गुण दो प्रकार के हैं, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। तो पहले अनुजीवी गुण शुद्ध हो जाते हैं जब स्थान अनियंत अवस्था होती है, तो जो शुद्ध पर्याय होती है तो प्रतिजीवी गुण जो शुद्ध नहीं हो गए थे वो भी शुद्ध हो गए। तो आता है जिसमें प्रश्नों पर माना जाता है अनुजीवी गुण किसको कहे, प्रतिजीवी गुण किसको कहे, भाषा आती है जानने का विषय है, प्रेरण का विषय नहीं है, तो जानकारी करने का है। उसका नाम मोक्ष कहने में आता है, उस भिन्न भिन्न होने का कारण ऐसा, ये जो परमाणु भिन्न भिन्न हुए कर्म का, उसका भिन्न भिन्न होने का कारण ऐसा कि जो मोह लाभ द्वेष इत्यादि विभाग अशुभ परिणति के विघटने पर जीव का शुद्धत्व रूप परिणमन, तो कर्म परमाणु क्यों चले गए, उसको कर्म परमाणु को देखते नहीं, इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय ज्ञान का विषय वे होते नहीं, लेकिन जब जीव मोह लाभ द्वेष नहीं होकर के शुद्ध परिणमन करने लगता है तब ये परमाणु स्वयं चले जाते हैं, और जब जीव राजद्वेष मोह अशुद्ध परिणमन करता है तो वो परमाणु स्वयं आ जाते हैं, उसको रोक नहीं सकते, देख भी नहीं सकते और रोक भी नहीं सकते। उस भिन्न भिन्न होने का कारण ऐसा कि जो मोह राजद्वेष इत्यादि विभाग अशुद्ध परिणति के मिटने पर जीव का शुद्धत्व रूप परिणमन, ऐसा क्यों लिया, अशुद्ध परिणति रहे मिटे नहीं और जीव का शुद्धत्व परिणमन हो जाए ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि तो हमारी आत्मा तो शुद्ध है, तुम शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है ऐसा ही है हमारे भाव में लिया करें, मुझे तो अशुद्ध परिणति मिटी है क्या, और आज में अशुद्ध परिणति मिटने पर शुद्धता आती है, अशुद्धता वैसी की वैसी रहे और शुद्धता आए ऐसा बच्चा नहीं, बहुत व्यवस्थित बात है। यहाँ अभेद है, अभिन्न अनुभव एकत्व कर रहा है, वो एकत्व छूटेगा तो आत्मा में एकत्व होगा, एकत्व छोड़कर भिन्नत्व होगा वेद ज्ञान से तब आत्मा में एकत्व होगा, भिन्नत्व नहीं हुए विभाव के साथ अभिन्नत्व रह जाए और आत्मा में भी अभिन्नता हो जाए ये दो बात सकती नहीं, क्योंकि अवस्था ही पलटती है, अवस्था ही पलटती है, एक अवस्था अपने अवस्था रूप रहे और बिना पलटे दूसरी अवस्था रूप में हो जाए वो तो विज्ञान के बाहर की बात होगी, वस्तु के स्वरूप के बाहर की बात होगी, जैसे हमारी उंगली है वो सीधी है, सीधी भी रहे और ऐसी भी हो जाए वो बात कैसे बनेगी, इनकी अवस्था जो सिद्धि है वो पलट करके ऐसी हुई है, ऐसी भी रहे और ऐसी भी रहे दो बात को करने वाली इस तरह से। जीव का शुद्धपणा रूप परिणम, शुद्धत्व रूप परिणम, मैंने शुद्धपणा रूप परिणम, शुद्धपणा रूप स्वभाव में शुद्धपणा रूप परिणम की बात करती है मोक्ष की अवस्था में। उसका विभाव रूप अशुद्ध परिणति के उसका विवरण जीव का विभाव रूप अशुद्ध परिणति मिटने का और जीव का शुद्धपण रूप परिणम होने का विस्तार करते हैं, विवरण मैंने विस्तार करते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है कि शुद्धत्व परिणमन सर्वथा सतत कर्मों के क्षय करने का कारण है। क्या था? जीव से बंधे हुए सतत कर्म का क्षय होने का कारण ये भी है जीव का शुद्धत्व रूप परिणमन होना। अगर जीव शुद्ध स्वरूप परिणमता है, शुद्ध रूप परिणमता है, विभाव रूप नहीं परिणमता है तो सभी का क्षय हो जाएगा। इसलिए ज्ञानावरण के लिए कुछ करे, दुष्णावरण के लिए कुछ करे, आयु के लिए कुछ करे, ऐसी बात नहीं है। एक शुद्ध स्वरूप परिणमन ऐसा कारण है कि जिससे सभी कर्म का क्षय हो सकता है। ऐसा शुद्ध परिणमन सर्वथा द्रव का परिणमन रूप है, निर्विकल्प रूप है, इसलिए वचन के द्वारा कहने का समर्थपणा नहीं है। ज्ञानी है, परिणमन शुद्धत्व रूप परिणमन कर रहे हैं लेकिन उसको अपनी भाषा में बता सकते नहीं है। ये परिणमन ऐसा है, ऐसा शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव का परिणमन रूप है। मतलब क्या? कि जो द्रव स्वभाव है वो परिपूर्ण सिद्ध है, तो शुद्धत्व रूप परिणमन है वो सर्वथा मैंने पूरा का पूरा द्रव का परिणमन है, द्रव का परिणमन रूप है। जैसा द्रव है वैसा परिणमन है। और यह निर्विकल्प रूप है, ये विकल्प में नहीं आता, तो परिणमन विकल्प में नहीं समाता, तो फिर भाषा में आने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं, तो बिल्कुल बात की बात है। इसका स्वरूप इस प्रकार है कि जो आत्मस्वरूप ज्ञान में आता है, अंतर्मुख ज्ञान में जो आत्मस्वरूप आता है और अंतर्मुख ज्ञान में जो शुद्ध परिणमन का अनुभव होता है, उसका जो ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान होता है, वैसा होता वैसा वो विकल्प की अवस्था में नहीं आता, विकल्प में नहीं आता। जो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है वो विकल्प ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। और भाषा तो विकल्प के निमित्त से होने वाली चीज है, तो जो विकल्प में नहीं आता है विषय तो भाषा में आने का तो सवाल होता है। भाषा में भी दो प्रकार है, एक बोलने की भाषा होती है, एक लिखने की भाषा होती है। बोलने की भाषा में जितना आता है उतना लिखने की भाषा में नहीं आता है। जो ग्रंथ लिख रहे हैं तो लिखने में आता है, इससे ज्यादा तो बोलने में आता है। बोलने में आता है इससे ज्यादा तो विकल्प में होता है, विकल्प में होता है इससे ज्यादा निर्विकल्प अवस्था में होता है। ऐसे एक उत्तरोत्तर अवस्था होती है। इसलिए ग्रंथ पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि हमको क्या मिलता है। ज्ञानी के ज्ञान में जो चीज है उसमें से हमको कितनी मिल रही है तो समझ लेना चाहिए कि बहुत कम अंश में हमको मिल रही है। इसलिए ज्ञानी से प्रत्यक्ष परिचय करने का जो कृपा उनके खास करके बहुत भजन देते हैं, इसका ये कारण है प्रत्यक्ष परिचय का। तो लिख के जाएंगे ना उतना उसके बोलने की भाषा में इससे ज्यादा होता है, तो फिर लिखते हैं कि जितना ज्ञान में आता है उतना कलम में नहीं, जितना बोलने में नहीं आता वो बोलने में आता उतना कलम में नहीं आता है, कलम से बोलिया है। तो जो लिखावट है उसमें बहुत कम होता है, इससे ज्यादा तो प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। प्रत्यक्ष रूप में भाषा के अलावा दूसरी भी बातें होती है। झलक होती है तो झलक के साथ जो भाषा आती है, झलक की चेष्टा के साथ जो भाषा आती है उससे जो बोध मिलता है, ऐसा बोध कभी मिल सके मिल सकता नहीं। इसलिए अगर हमें प्रत्यक्ष बोध मिलता है तो हमें ग्रंथ पढ़ने का अभिप्राय या प्रायोरिटी रखना चाहिए। सत्संग का नंबर पहला और पढ़ने का नंबर दूसरा, ऐसा विवेक होना चाहिए। खुद आप तो सत्संग नहीं करेंगे, आप तो एकांत में शास्त्र पढ़ेंगे, उनको सही विवेक नहीं है। ऐसे बात क्या कहा इधर, ऐसा सत्व परिणाम सर्वथा द्रव का परिणाम रूप है, मैंने द्रव्य सदृश परिणाम रूप है। द्रव का परिणाम कहने का मतलब यह है कि द्रव्य सदृश परिणाम रूप है और निर्विकल्प रूप है। निर्विकल्प है इसलिए वचन के द्वारा कहने का समर्थपना नहीं है। तो ये शुद्ध परिणाम को हम वचन के द्वारा बता सकेंगे नहीं, शुद्ध परिणाम उसमें बता सकेंगे। कुछ शब्द का प्रयोग किया जाएगा लेकिन इसका भाव शब्द में नहीं, भाव शब्द में होता नहीं और भाव में शब्द होता नहीं। इसका अंतर है जो कभी एक दूसरे का एक दूसरे में अभाव रहता है, छवि भी क्या जाने के परिणाम को देख सकते। एक तो बात वो है कि जाने के परिणाम को देखने में भी रूप बताता है। जितने ज्ञानी के संग में जाते हैं उतने सब ज्ञानी को परिणाम को देख सकते नहीं है, क्योंकि उतने योग्यता होती है। सब जो देख लेते हैं वो ज्ञानी के परिणाम को देख लेते हैं, वो खुद ही परिणाम बन जाते हैं। तो हम दृष्टान देते हैं सऊदी का, तो विज्ञान का विषय सुना उन्होंने प्रथम प्रवचन में कि राग अने ज्ञान जुदा है। गुजराती में डाल सको राग अने ज्ञान जुदा है, तो उन्होंने सुना था उतनी बात नहीं है। राग और ज्ञान गुरुदेव के परिणाम में भिन्न भिन्न परिणाम हो रहा था, उनको देख लिया। कुछ ऐसी उत्तम कोटि की मुमुक्षुता को लेकर के बैठे थे वहां, उनने तो किस अवस्था में बैठे थे, इस प्रकार की उत्तम कोटि की मुमुक्षुता लेकर के बैठे थे। तो गुरुदेव को उन्होंने सुना नहीं है, परिणमते हुए देख लिया था। तो देखने वाले को परिणाम हो जाता है। तो इन बात में न्याय लिया था सर्व के दिनों में, तो दोहराता हूं तो हम वीरेंद्र परमात्मा का दर्शन करते हैं। हमारे मंदिरों में हमने भगवान की स्थापना की है, पर जैसे साक्षात परमात्मा है वैसे परमात्मा मान करके ही हम वंदन नमस्कार स्तुति पूजा आदि करते हैं, है ना। अब जो बात है कि वो साक्षात परमात्मा है तो उसमें है क्या, अब तो पत्थर के मूर्ति नहीं रही, ये तो हमारे भगवान बच्चे हैं। हमारे भगवान में क्या चीज होती है, बाणी जो खेलती है वो शरण में उसको कुंडल की पर्याय है, वो कोई भगवान की पर्याय तो है नहीं। तो भगवान को भगवान की पर्याय में हम देखेंगे तो उसमें क्या देखना है। शरीर है वो भी परमाणु की पर्याय है, दिव्य शनि भी परमाणु के पर्याय, उसको तो हमने देखना नहीं है, तो हमें क्या देखना है? तो उनमें स्वसंवेदन है, अनंत स्वसंवेदन की पूर्ति है। क्या है भगवान माने क्या? अनंत स्वसंवेदन की मूर्ति। तो वेदन एक ऐसी चीज है कि वेदन को देखने वाले को वेदन में ले आता है। वेदन एक ऐसी चीज है कि उसको देखने वाला वेदन में आ जाता है। किस तरह से? कभी दूसरों के दुख की पीड़ा की वेदना देखते हैं तो उनको क्या होता है? चाहे रास्ते पर एक पिल्लू भी हो, बहुत वेदना से पीड़ित हो, कभी क्या है उसके संग भी कीड़े पड़ जाते हैं, उसका कोई इलाज कराते नहीं, उसको डॉक्टर को क्या पर जाना आना होता नहीं, माथा सड़ जाता है, बहुत वेदना से चिल्लाता हो, देखने वाले को क्या होगा? करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी, अरे बेचारा जिनको बहुत वेदना है। उसका मतलब कि ऐसे देखने वाले को भी वेदना हुई कि नहीं हुई कुछ अंश में, ऐसे बाहर में असाता वेदने की भी उतनी असर आती है। तो भगवान के अनंत स्वसंवेदन, स्वसंवेदन नहीं इतना अनंत स्वसंवेदन को अगर हम विजुलाइज करें, क्या हमारे विजन में ले लें, तो हमें वो स्वसंवेदन का आविर्भाव हुए बिना रहेगा। तो यही जिनेंद्र दर्शन का लाभ है, बाकी केवल श्रोताओं करना तो वो जिनेंद्र दर्शन का लाभ मानना नहीं चाहिए। उनके तरह का प्रवचन शाम को देखा था। तो इस तरह से यहाँ जो है तो ज्ञानी को जो पहचानता है उसको इसका स्वसंवेदन से पहचानते हैं, भिन्न भिन्न परिणवन से पहचानते हैं। तो पहचानने वाले देखने वाले को भिन्नता कैसे होती है तो उसको आने लगता है, उसको प्रैक्टिस उसको चालू हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस चालू होने से पहले तो किस प्रकार से किस विधि से ये कार्य करना वो नहीं आता था, जबकि ज्ञाने का दर्शन से वो बात आने लगी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस अंतरों में स्वसंवेदन होने की विधि से हम अनादि से अनजाने हैं, अनभिज्ञ है, वो चीज उतनी रहस्यमय रही हमेशा, उसकी बहुत बड़ी समस्या रही हमको। तो समस्या सुलझने का बहुत समाधान का एक अच्छे का अच्छा अवसर है पूरी सजीवन मूर्ति होती है। उस सजीवन मूर्ति के परिवर्तन से देखने वाले का भी आत्मिक संजीवनी उसमें पैदा होने लगती है। वो मुर्दा था तो उसमें जीव आया, पहले तो वो मुर्दा था, क्या था? बिल्कुल मुर्दा था, उसमें नया जीवन आने लगा, नई चेतना आने लगती है। नहीं प्रत्यक्ष रूप का महत्व है, ऐसा महत्व होने से कृपा देव ने बार बार इस बात पर भजन दिया है। इसका यही कारण है कि हमको भी ज्ञान प्राप्ति इससे हुई थी। पता है 114 भाव प्रतिबद्धता से निरंतर विचरते हैं ऐसे ज्ञानी के चरणारे, उसका सेवन जो करते हैं और उसको पहचानते हैं, उसकी असल प्रकृति होती है और इसके पर अपूर्व प्रेम होता है, प्रकृति होती है उन्होंने। ये लोग क्या कहते हैं? हमने तो पहचान लिया है, तो पूछते हैं उसको, अच्छा पहचाना तो क्या अपूर्व प्रेम साथ साथ आया है क्या? प्रेम तो नहीं आया उसका, प्रेम तो हमारे परिवार के प्रति हो सकता है, लेकिन ज्ञानी के प्रति प्रेम कैसे होता है? उपलब्ध रखा है इस उपकरण में, उपलब्ध रखा है अचल प्रेम। अचल प्रेम मैंने तो प्रेम बाधा आने से विचलित नहीं हुए, लेकिन ज्ञानी करीब कभी गुस्सा कर ले तो विचलित होने के नहीं हुए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई अपराध नहीं हो, हमारा बिना आप्रदन को दंड दे दे, अन्याय कर ले, કેસા સ્વાર પર માનો કઈ આચાર હવે સવાલ રામચંદ્રજી ને સીતા સન્યાય ક્યાં કે નહીં ક્યાં અપરાધ થા ઉસકા ક્યાં અપરાધ થા ઉસકા કોઈ ખુદ કા અપરાધ થા ક્યાં રાવણ લે ગયા તો વ્યવસ્થિત પવિત્ર પરીક્ષા મેં દી ફર ભી બાદ મેં ક્યાં અપરાધ હો ગયા થા પહેલે ભી નહીં થા પીછે ભી નહીં થા તો સીતાજી કો રામચંદ્રજી કે પ્રતિ જો પ્રેમ થા તો પ્રેમ મેં હાનિ હુઈ કે નહીં યે સવાલ યે હૈ તો સરાસર ને કરે તો ભી નહીં હોય યે બાત કૈસે પ્રેમ મેં બોલે બહુત અચ્છા ડાયલોગ આયા હૈ હમારે જો પદ્મ પુરાણ હૈ તો રામચંદ્રજી કે રામાયણ મેં જૈન રામાયણ જિસકો બોલતે હૈ ભગવાન રવિશંકર આચાર્ય કા લિખા હુઆ પુરાણ હૈ આચાર્ય ને લિખા હૈ તો શો સીતા કો વો સાલ કે જો છોડને મેં ઇસકો બોલતા હૈ ઠીક હૈ તો શો મુજે છોડ દિયા હૈ તુમ તો અરમાન ક્યા હૈ તુમ કુછ કે છોડ કે ચલેગા તુમ્હારા કોઈ દૂસરા રાસ્તા નહીં લેકિન રામચંદ્ર જી કે હૃદય મેં મેરે પ્રતિ જો પ્રેમ હૈ ઉસકો કોઈ ફરક નહીં હુઆ હૈ પહેલા સત્ય ઉસમે મેં નિકાલા હૈ મેરે હૃદય મેં જો ઇનકે પ્રતિ ઉસમે ભી કોઈ ફરક નહીં હુઆ હૈ તો ઇસમે એસા હી ઘટના ઘટને વાલી હોગી તો એસા હી હોના હોગા તો યે બાત બની હૈ તો યે લૌકિક કારણ બસ એસા હુઆ હૈ હમ જાનતે હૈ ઠીક હૈ બના તો બના પણ મેરા ઇતના સંદેશ હમકો દેના હૈ કે લૌકિક કારણ બસ એસા કિયા તો ઠીક હૈ હમકો તો કોઈ ફરક નહીં પડતા હૈ લેકિન ધર્મ કે વિષય મેં કોઈ એસી બાત નહીં હો જાય ઇનકા ધ્યાન રખિયેગા લૌકિક કારણ કો ઇતના સુધરે દિયા ઠીક હૈ હમકો તો કોઈ ફરક નહીં પડતા આપકો ભી કોઈ ફરક નહીં પડતા આપસ મેં કોઈ ફરક નહીં પડતા હૈ તો ઉસકી કોઈ ગિનતી ભી નહીં હૈ લેકિન મુજે છોડી હૈ સકે ધર્મ કો છોડને કા નહીં હો જાય ઉતના ખ્યાલ રખેગા લૌકિક કારણ બસ સીતા કો છોડને મેં સીતા કો કોઈ આપત્તિ નહીં और मैं रामचंद्र जी को कोई आपत्ति है लेकिन लौकिक कारण में धर्म को छोड़ने में कोई आपत्ति आ जाएगी जब तो वो जानती है कि शायद समय दृष्टि है धर्म को छोड़ने वाला नहीं है फिर भी विकल्प आ गया इस प्रेम के वर्षों में तो आ गया तो बोल के रहें बात खत्म क्या कहते हैं ચિંતન મેં નહીં આતા ભાષા મેં તો આયેગા એસા સ્વરૂપ નિજ આત્મ દ્રઢ હૈ આત્મા કા સ્વરૂપ હૈ અચિંત એસા નિશ્ચય જિસ પરમ કૃપા મેં સત્પુરુષ ને પ્રકાશમાન ક્યા કે લીધે ક્યા કહે નમસ્કાર કે અલાવા ઓર કોઈ બાત મેં રહેતી નહીં કા વિષય ભાષા કા વિષય इसलिए वचन के द्वारा कहने का सामर्थ्य नहीं है इस कारण से इस रूप में कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है ज्ञान गुण अब क्या है भाषा में नहीं आ सकता है फिर भी वो हम कहते हैं वो वेद से कहेंगे क्योंकि अवेद का तो भाषा नहीं होती अवैध परिणाम की कोई भाषा नहीं होती इस कारण से इस रूप में कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है ज्ञान गुण क्या कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव तो किस गुण का परिणमन होता है ज्ञान गुण का कहीं लोग ये ज्ञान सूर्य स्वरूप का अनुभव को चारित्र का परिणाम लेते हैं, कहीं लोग श्रद्धा का परिणाम लेते हैं, कोई आनंद का परिणाम लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान योग का परिणाम समझाने के तौर पर ये बहुत व्यवस्थित बात है। तो इस कारण इस रूप में कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप से अनुभव रूप परिणमाता है ज्ञान योग, तो मोक्ष का कारण है। क्या कहा? ज्ञान गुण का अनुभवन रूप परिणमन, ज्ञान गुण का वेदन रूप परिणमन, ये मोक्ष का कारण है। भाषा में अनुत रहते हम बोल सकते हैं, वैसे तो परिणमन तो अचिंत्य है, तो अचिंत्य स्थिति स्वरूप है वो, जो आपको कहते हैं अचिंत्य, भी अचिंत्य, उसका पेट भी अचिंत्य, कांति मैंने उसका परिणमन की कांति भी अचिंत्य, फिर भी समझाने के तौर से ऐसा कह सकते हैं कि जीव में जो ज्ञान गुण है तो परिणमाता है।
रत्नत्रय
ले सकते हैं, लेकिन फिर भी रत्नत्रय नहीं लेकर के ज्ञान गुण कहने के पीछे अभिप्राय क्या है, उतना थोड़ा गहराई में हमें जाना है। तो दूसरे दूसरे परिणमन से हम इतना सुगम रूप से नहीं समझ सकते, जबकि ज्ञान के अनुभव रूप परिणमन से ये समझ नहीं समझता है। ठीक है, दूसरे गुण अपने को नहीं जानते, दूसरे गुण के परिणमन को कौन जानता है? ज्ञान जानता है, ज्ञान के परिणमन को भी ज्ञान जानता है, दूसरे गुणों को परिणमन को भी ज्ञान जानता है। श्रद्धा को श्रद्धा नहीं जानती, आसन को आसन नहीं जानता, आनंद को आनंद नहीं जानता, ज्ञान सबको जानता है। इसलिए समझाने में ज्ञान ही साधन है, समझने में भी ज्ञान ही साधन है। पर यहाँ जो व्यवहार है इस ग्रंथ का, ये उत्तम को चीजें मनुष्य को समझा करके ज्ञानी बनाने का व्यवहार चल रहा है। जो ग्रंथ रचना है वो व्यवहार है, उपदेश देना है वो व्यवहार है। तो आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं, उपदेश में वो बात समझाने में हमें भूल पड़ती है, इसलिए ज्ञान को मिला। तो सारे समय साथ में आत्मा को ज्ञान मात्र कहने कुछ अभिप्राय भी बनी है। ऐसे तो अनंत गुण है, अस्तित्व मात्र क्यों नहीं कहा, आनंद मात्र क्यों नहीं कहा, श्रद्धा मात्र क्यों नहीं कहा, ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? तो क्योंकि कहने वाले का यह अभिप्राय बोलता है। क्या बोलता है? अभिप्राय किस तरह से? अभिप्राय में अनुभव है, वो तो अनुभव बोलता है कि मैं कैसे समझा, मैं भी एक दिन अनजाना था, अज्ञानी था, मैं किस प्रकार से समझा। तो जिस प्रकार से वो समझे है उसी प्रकार से वो समझाते हैं। तो समझाने के पीछे उनका अनुभव बोलता है, कौन बोलता है? अनुभव बोलता है। और जिसका जिसको अनुभव होता है उसको कहने वाले का अनुभव के साथ अनुसंधान हो जाता है, तो उसको पता चलता है हाँ कहने वाला अनुभव है। वैसे दूसरे भी जो अध्यात्म शास्त्र है, हृदयात्म के कुछ शास्त्र है, उसमें जो कुछ विषय चला है, ऐसा एक शास्त्र हमारे विभिन्न साहित्य में सविता ज्ञानी करके, ऐसे तो ग्रंथ तो उसमें दो ही है, पूर्वाध और उत्तरार्ध, पांच अध्याय पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा रह गया है। लिखने वाले कौन आचार्य है, कौन मुनि है, कौन ज्ञानी है, पता नहीं है, सब कुछ वह लिखा हुआ है। बड़ी खतरा को अठारह सौ जाता है दो बात के लिए करते हैं, उसमें पहले में करीब 750 से ज्यादा है, पूर्वाध में उत्तरार्ध में करीब 1200 से ज्यादा है। उसमें दूसरे अध्याय में उत्तरार्ध में 701 नंबर पे जाता है। 700 के अगल बगल में सम्यक सम्मुख जीव का विवरण करते हुए और उसको साधन द्वारा बताते हुए करीब 25 गाथा से भी आगे जो उसके 20-25 गाथा से साबित किया है, बहुत तर्क शुद्ध प्रतिपादन करते हैं वहां, बहुत तर्क शुद्ध प्रतिपादन है। तो उन्होंने 401 नंबर की गाथा में टोटल लगाया है कि आत्मा आत्मा में साधन को साधन के निर्माण साथ ही जाए ज्ञानम एकम कारणम, ऐसा करके गाथा उस तरह से कि ज्ञानम एकम कारणम साधन आदि विभव सीता, साधन की विधि का विधान करे कथन करे चैतन्य के ज्ञान एकम कारण, ज्ञान एक मात्र कारण, सानुभूति एक नेतुष्ट सानुभूति का एक कारण है, एक मात्र कारण है, तस्मात तत् परम पदम, इसलिए हम ज्ञान को परम पद कहेंगे। वो गुण तो अनंत है लेकिन ज्ञान को हम परम पद कहेंगे। तो इस विषय में सभी ज्ञानियों का एक अभिप्राय है, चाहे दुष्यंत जी का चित विलास का ज्ञान अधिकार पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, चाहे प्रयत्न सार पढ़ो, चाहे सत्याचार पढ़ो, एक ही अभिप्राय, पर एक ही अभिप्राय हो सकता है। ज्ञानी का मुनि का आचार्यों का गंधर्वों का वीरेंद्र परमात्मा का अभिप्राय सभी का एक ही होना है, किसी का विरुद्ध अभिप्राय हो सकता दो अभिप्राय नहीं हो सकता, एक हो इसी काल में परमात्मा दूसरी बात होगी। मात्र ज्ञान नहीं सकते हैं, मात्र मात्र विज्ञान है क्या? हमारे घर में हलवा बने और आपके घर में हलवा बने या फिर किसी के घर में हलवा बने कठिन भी प्रकार से बनता है क्या? कोई कैसे बनेगा? गुरु तो कहते थे कि कोई भाई कितनी भी चतुर हो बना दे दूसरे तरीके से बना दे ऐसा करके बोलते थे। कोई बुद्धि वाली बहुत बहुत बुद्धि वाली भी होती है, हजार साल पहले आप हलवा इस तरह से बनाते थे, अब तो मॉडर्न जमाना दूसरा है, ये जमाना ही आज अलग हो गया है, मॉडर्न लाइफ ऐसे नहीं बनेगा हलवा बना देते काटे वाली भाषा में कोई डाएंगे बिक्री आलू तो फिर बना ला कोई डाएंगे बिक्री तो इसकी माँ थे डाएंगे मैंने वाइस शायद इसकी कोई लड़की हो ओवर वाइस बना दे कोई दूसरी तरह से नहीं बनेगा, इसी तरह से बनाना पड़ेगा तो दूसरा नहीं करना तो तीनों दी रही है नौकरी भी नहीं करेंगे। नौकरी मैंने क्या तो खुदा को कोशिश लगा दे पानी डाल करके थोड़ा घी डाल करके जो भी पानी घी और ये लुझाता होता है वो भी नहीं बनेगी, उसके काम में भी नहीं आएगी, तीनों को फेंक देना पड़ेगा, ये बात हो जाएगी। क्या कहते हैं कि ऐसा शुद्धत्व परिणमन जीत इस कारण इस रूप में कहते हैं कि जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमाता है ज्ञान गुण, सब मोक्ष का कारण है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव में परिणमाता कौन है कि ज्ञान गुण परिणमाता है, यही कारण है, मोक्ष का भी यही कारण है, कहने की जरूरत है कि सभी दर्शन का भी कारण। उसका समाधान ऐसा है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप है जो ज्ञान, वो जीव के शुद्धत्व परिणमन को सर्वथा लिए हुए हैं। जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप ज्ञान का पर्याय है उसमें दूसरे गुणों का शुद्धत्व रहता है ऐसा नहीं बनता है, जिनका शुद्धतर परिणाम जो होता है उसके कारण से वो ज्ञान अनुभव करता है शुद्ध स्वरूप का। ज्ञान गुण तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे और जिनका परिणाम अशुद्ध स्वरूप रह जाए ऐसा नहीं, अभिनाता नहीं है। सर्वगुणांश नहीं समय समय दर्शन के काल में जीव के अनंत सभी गुण यथासंभव अनुसार शुद्ध परिणाम करने लग जाते थे। इसलिए बात ज्ञान से कहेंगे, समझेंगे भी सुनने वाला ज्ञान से और कहेंगे भी ज्ञान के नाम से, लेकिन साथ साथ तो बात है प्रश्नोत्तर में तो तीन ही गुण आए लेकिन अनंत गुण है, लेकिन साधन और समझना और साधन करना वो ज्ञान से होगा, इसके अलावा घटेगा नहीं। कुछ सुनने भी रह सकता है।